संत नाभादास जी द्वारा लिखी हुई भक्तों की जीवन गाथा भक्तमाल, जिन्हें सरल भाषा में आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे अपने प्रभु जी के परम भक्त अरविंद चौधरी जी।
राधे राधे। राधे राधे। श्री भक्तमाल की जय। भक्तमाल के सभी भक्तों की जय। भक्तमाल के सभी संतों की जय। भक्तमाल के प्रथम श्रोता श्री हरि, द्वितीय श्रोता श्री रस खान जी, समस्त भक्तों की जय। प्रणाम सबको। सुधन्वा सूरत के चरित्र का ये द्वितीय पार्ट है और हमने सुना कि सुधन्वा को किस तरह से अर्जुन ने मारा। सुधन्वा की मृत्यु के बाद सूरत रणभूमि में आ गए हैं और सामने अर्जुन है और अर्जुन को उन्होंने ललकारा। अर्जुन को ललकारते हुए कहा कि तुमने एक बालक को मार दिया है, अभी युद्ध मेरे साथ है तो अपने संभाल दो अपने अस्त्र शस्त्र, देखो मैं तुम्हारी क्या दुर्गति करता हूँ। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, क्यों प्रभु, आपने तो वही काम कर दिया जैसे बच्चे रत्नों के बदले में कांच ले लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता, आपने वही काम किया है। आपने उसकी छोटी सी बेर के समान उसकी मृत्यु यानी उसकी आत्मा के लिए आपने इतने बड़े भारी अपने पुण्य को दे दिया। कैसे कैसे पुण्य आपने उस बाण पे रख के सुधन्वा को दे दिए हैं महाराज। ये व्यंग कर रहा है सूरत। व्यंग क्यों कर रहा है? दो तरीके से व्यंग हो रहा है। एक तो ये कि वो तो वैसे भी मर जाता, जब आप सामने खड़े हो अर्जुन के साथ में तो आपको इतने पुण्य देने की आवश्यकता क्या थी? आप इतने बड़े बड़े पुण्य धर के बाणों पे दे रहे हो उसको तो मरना था क्योंकि आप थे, आप जो चाहेंगे वो होगा। परंतु यहाँ वो व्यंग इसलिए भी कर रहा है कि प्रभु ये सारे पुण्य आप ट्रांसफर कर रहे हो किसको? सुधन्वा को। आप अपने किसी भक्त को खाली नहीं रखते हो, आप उसको बिना चाहे वो सब दे देते हो। तो यहाँ से बाण पे रख के वो सारे पुण्य पहुँचा रहे हैं सुधन्वा के पास। तो ये वो दाता हैं भगवान, अपने हर भक्त पे वो कृपा करते हैं, ना चाहे भी वो क्या क्या दे देते हैं। वो इसलिए भी बोल रहे हैं कि आप तो कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं महाराज, आपकी लीला आप जाने। तो खैर उन्होंने ये व्यंग किया और कहा कि श्री कृष्ण अब बचा लो इसको, अर्जुन को अगर आप बचा सकते हो तो मेरे हाथों बचा लो अर्जुन को, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। ये कहके उसने बाण चलाया तो सही में अर्जुन की इस बार फिर से रथ की हालत खराब कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, अर्जुन भाग चल, इसके सामने ठहरना ठीक नहीं है, ये बड़ा खतरनाक योद्धा है। और भगवान ने 3 योजन दूर रथ को ले गए भगवान अर्जुन के भगा के, और बीच में पूरी सेना ने जितने योद्धा थे उन्होंने घेर लिया सूरत को और भगवान अर्जुन को बचा के ले गए कि इसके साथ युद्ध ठीक नहीं है। अर्जुन के मन में भी थी कि नहीं मुझे इससे युद्ध करना है। भगवान भी लीला करते हैं वही जाने, वो कुछ दिखाना चाहते थे अर्जुन को। अब इतनी भारी सेना ने जिसमें सात्यकी जैसे, प्रद्युम्न जैसे, प्रद्युम्न भगवान के अवतार हैं, प्रद्युम्न भी ऐसे धनुर्धर थे, उसमें ऐसे योद्धा थे और वो सूरत के सामने अड़के खड़े हो गए। सूरत ने पर पूरी सेना को तितर बितर कर दिया, ऐसा उसने भयानक घमासान युद्ध किया, पूरी सेना को उड़ा दिया उसने और वो 3 योजन दूर सारी सेना को कुचलता हुआ और पहुंच गया अर्जुन के सामने। अर्जुन भी हैरत में है कि इतनी शीघ्र इसने इतने बड़े बड़े योद्धाओं को पार करके फिर मेरे सामने आ गया है, और फिर से घमासान युद्ध होने लगा। उसने अर्जुन से कहा कि प्रतिज्ञा कर, जैसे मेरे भाई के सामने प्रतिज्ञा करी थी ना, ऐसे मेरे सामने प्रतिज्ञा कर। अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी कि मुझे सौगंध है अपनी धनुर्विद्या की, मुझे सौगंध है भगवान की, मैं तेरे सर को काटूंगा वैसे जैसे तेरे भाई को काटा था और तेरे पिता के सामने तेरे सर को उड़ाऊंगा मैं, ये मेरी सौगंध है, तू कर प्रतिज्ञा। अर्जुन ने कहा, सूरत ने कहा, मैं तुझे इस रण के इस रथ से नीचे धूल में गिराऊंगा, अबे धूल में मिलेगा तू, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और अगर मैं ऐसा ना कर पाया तो मुझे भगवान श्री कृष्ण का भक्त कह लेने का कोई अधिकार नहीं है। दोनों भिड़ गए युद्ध में। ऐसा युद्ध हुआ जिस इससे पहले जो इसके छोटे भाई के साथ में युद्ध हो रहा था सुधन्वा के साथ, वो युद्ध भी भूल गए लोग। देवता लोग आकाश में थे और देख रहे थे, दोनों एक दूसरे के अस्त्र शस्त्र को काट रहे थे, भयानक युद्ध चल रहा था। कभी वो भगवान श्री कृष्ण को भी घायल कर रहा था बीच बीच में, अर्जुन ने भी उसके सारथी को घायल किया, पर अर्जुन की उसने दुर्दशा बिगाड़ दी। ऐसा युद्ध हुआ, देवता देख रहे थे कि यही कौन इसमें विजयी होगा, पर सूरत ये जानता था कि जहाँ श्री कृष्ण है विजयी तो वहाँ होगी श्री कृष्ण, क्योंकि अर्जुन के साथ बैठे हुए हैं, विजय तो अर्जुन की निश्चित है। पर मुझे भी श्री कृष्ण को देखते हुए मरना है, ये उसने मन में ठान ली थी। वो ठान के आया था कि मरना है पर ऐसा युद्ध करके जाऊंगा कि अर्जुन भी याद करेगी उसने कि उसका युद्ध किसी के साथ हुआ है। और वही हुआ कि उसने अर्जुन को पसीने दिला दिए, अर्जुन की हालत ख़राब हो गई। जब अर्जुन थक गए, बुरा हाल हो गया, उसने भगवान की ओर देखा, उसमें हिम्मत नहीं बची है अर्जुन में। भगवान ने इशारा किया और भगवान का इशारा उसे मिल गया कि हाँ समय आ गया है। तो उसने बाण चढ़ाया और बाण चढ़ा के उसने कहा कि ये वो बाण है। उसने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, हे गोविंद तेरे सहारे है क्योंकि मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं तो जान चुका हूँ कि युद्ध में मेरा कुछ नहीं अड़ता है, कुछ नहीं चलता है, तुम होते हो तो सब होता है। उसने श्री कृष्ण का नाम लेके और बाण चलाया तो इस बार सूरत समझ गए थे क्योंकि श्री कृष्ण का इशारा मिल चुका था। सूरत खड़े हो गए, वो धड़ कटा तो भगवान तो सबकी लाज रखते हैं क्योंकि इसने कहा था कि तुम्हें भी धूल चटाऊंगा, मैं तुम्हें रथ से नीचे गिराऊंगा धूल में। तो ऐसा हुआ कि जब उसका धड़ कटा, धड़ कटते ही वो ऐसे उछला धड़ उसका कि वो सीधे अर्जुन के धड़ में लगा और इतने जोर से लगा, इस गति से लगा कि अर्जुन रथ से उड़े और उड़ के धूल में गिरे और बेहोश हो गए। उसे धूल चटा दी, बेहोश हो गया। अब ये जो सर था ये भी भगवान श्री कृष्ण जी ने हाथों में उठाया, सूरत का उठाया और गरुड़ जी की ओर इशारा किया, गरुड़ जी को दिया और कहा कि ये जो सर है ये जाके गंगा जी में इसे डाल दीजिए, जितने भी अपने तीर्थ हैं सब तीर्थों में इसे डाल दीजिए ताकि हमारे तीर्थ पवित्र हो जाएं। ऐसे पवित्र भक्त की मतलब के स्पर्श से हमारे सारे तीर्थ भी पवित्र हों। तो तीर्थों को पवित्र करने के लिए भगवान ने वही जो सर था फिर भगवान शिव ने वो वहाँ से उठाया और अपनी मुंडमाला में उसको भी रख लिया। तो दोनों भाई जो हैं भगवान शिव की मुंडमाला में भगवान शिव धारण करते हैं उनको। तो ऐसे भगवान के भक्त होते हैं। तो भगवान सबका यश के लिए और सबको ऐसी वस्तु प्रदान करते हैं जो सोचते भी नहीं हैं भक्त, उनको इतने पुण्य प्रदान कर देते हैं, ऐसी गति दे देते हैं कि जो भक्त सोचते भी नहीं हैं। तो भगवान के भक्तों की गति और भगवान के भक्तों का यश हमेशा गाया जाता है और उनकी गति उत्तम होती है। बोलो भगवान के सभी भक्तों संतों की जय, सुधन्वा सूरत की जय। अब हम चरित्र में, इसी चरित्र में दो और नाम आए थे, लिखित जी और शंख जी, जो हंसध्वज के पुरोहित थे। तो ये पुरोहित कैसे बने इनके और ये कौन थे? ये दोनों ऋषि थे और धर्माचरण में इनका कोई तोड़ नहीं था। तो लिखित छोटे भाई थे, शंख बड़े थे। एक बार इनके दोनों जो भाई थे इन दोनों की संपत्ति का बंटवारा हो गया। बंटवारा होने के बाद जो लिखित है छोटा भाई वो शंख के यहाँ जाता है बड़े भाई के यहाँ। तो बड़े भाई के यहाँ आश्रम पे गया, आश्रम पे जाके उसने देखा कि भाई तो नहीं है आश्रम पे, पर आश्रम पे अमरूद लगे हुए हैं बड़े पके हुए, देखने में लग रहे बहुत मीठे हैं। तो एक अमरूद तोड़ा लिखित ने और अमरूद खाया, बड़ा मीठा अमरूद था। वापस आ गया अपने आश्रम पे। अगले दिन फिर भाई के आश्रम पर गया और उसे कहा कि भाई कल आया था आपके आश्रम पर, मैंने एक अमरूद तोड़ा खाया और बड़ा मीठा अमरूद था। तो शंख ने बड़ी टेढ़ी नज़र से उसकी तरफ देखा कि इस क्रिया की संज्ञा क्या हुई, तुमने मेरे यहाँ से अमरूद तोड़ा? तो उसने कहा कि अमरूद तोड़ा मैंने बिना पूछे तोड़ा, दे तो चोरी होगी, चोरी का दंड क्या है? चोरी का दंड तुम्हारा आज हाथ काटना है क्योंकि ये जो राज्य है इसमें तो यही विधान है, जो चोरी करता है हाथों से चोरी हुई तो हाथ कटने चाहिए, मैंने दोनों हाथों का इस्तेमाल किया है तो बोलो दोनों हाथ कटने चाहिए, जाओ तुम। तो ये सुधन्वा और सूरत के जो पिताजी थे हंसध्वज जी उनके पास गए और उनसे इन्होंने कहा कि हमें महाराज दंड दीजिए। उन्होंने पूछा क्या है अपराध क्या है, उन्होंने बताया ये अपराध, बोले इसका कोई दंड नहीं है, भाई की संपत्ति है उसमें से खा लिया कोई। अरे बोला महाराज आपसे पूछने नहीं आए हम दंड लेने आए हैं, ये डिसाइड करने वाले हम हैं कि हमें दंड क्या चाहिए, और दंड देने वाले हम ब्राह्मण हैं और हम ऋषि हैं, हम डिसाइड करेंगे दंड क्या है, आप दीजिए दंड। तो ऋषि क्योंकि श्राप दे दे इससे पहले ही उन्होंने कहा अपने उसको राजकर्मचारियों को, उन्होंने आदेश दिया भाई इनके हाथ काट लिए जाए, हाथ काट लिए उनके। वो आए मिले अपने भाई से लिखित शंख जी से मिले, शंख ने छाती से लगाया कि वाह, और उन्होंने उनकी प्रशंसा की कि छोटे सा अपराध की भी यदि हम दंड लेते हैं तो हमसे अपराध की संभावना कभी भी नहीं होगी, तो हम अपराध के भागी किसी पाप के भागी कभी नहीं बनेंगे, हमसे अपराध होगा ही नहीं। तो ये छोटे छोटे पाप से भी अगर हमें बचना है तो हम ध्यान रखें कि हमें क्या इसका दंड है, ये उसकी शिक्षा थी अपने भाई को। अब उन्होंने अगले दिन लिखित को कहा कि तुम्हें तर्पण करना है, देव और पितर के लिए तर्पण करके तुम्हें नदी पे जाना है। वो नदी पे गए क्योंकि भाई की आज्ञा है। वहाँ तर्पण के लिए, तर्पण होता है हाथों से, उन्होंने हाथ जैसे ही नदी में डाले तर्पण के लिए, तुझे बाहर निकाले तो दोनों हाथ थे उनके। ये बड़ा चमत्कार हुआ उनके सामने। उन्होंने आके खुशी खुशी अपने भाई को बताया। उन्होंने कहा कि ये प्रभु की कृपा है और तुम्हारे सदकर्मों का, क्योंकि तुम्हारे हाथ नहीं कटने थे पर तुमने धर्म का पालन किया है, हाथ कटवाए, धर्म का पालन किया और यहाँ पे इसी वजह से भगवान ने तुम्हें तुम्हारे हाथ दिए हैं वापस। तो जो कोई सदकर्मों पे पूरी तरह से आरूढ़ हो और ईश्वर पे विश्वास रखता हो उसके साथ कभी कोई दुर्घटना नहीं होगी। यहाँ से ये सीख मिलती है, इतने ही धर्म में आरूढ़ थे। जब ये घटना हंसध्वज को पता चली तो इन्होंने प्रार्थना करी, आप पुरोहित बन के मेरे राज्य में रहिए। पहले उन्होंने स्वीकार किया पर उन्हें पता चला नहीं ये बड़ा धर्मज्ञ राजा है, तो ये दोनों इनकी पुरोहिती में आ गए। और इनका विवाद अक्सर होता था सुधन्वा के साथ, क्योंकि सुधन्वा बहुत बड़े भक्त थे। पर इन्हें भक्त का प्रताप देखा। जिस दिन सुधन्वा को तेल की कढ़ाई में डाला गया था उसी दिन इन्हें भक्त महिमा पता चल गई थी और भगवान का भक्त के प्रति कितना प्रेम होता है वो पता चल गया था। जो ये सिर्फ अपने धर्म के कर्मकांडों में जितना विश्वास करते थे उन्हें उससे ज़्यादा विश्वास अब भक्ति पे हो गया था कि भक्ति में बहुत ज़्यादा कर्म करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि समर्पण सिर्फ अपने इष्ट पे होता है। जैसे भगवान कहते हैं गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में, भगवान कहते हैं कि जो मेरे निमित्त सब कुछ कार्य करता है ना, सिर्फ मुझे ही सब कुछ मान के मेरे निमित्त किए गए कार्य, उसके योग अक्षेम अर्जुन मैं स्वयं वहन कर लेता हूँ। योग अक्षेम मतलब जो उसको नहीं मिलना है उसकी प्राप्ति में करा देता हूँ, जो प्राप्त है उसकी रक्षा मैं करता हूँ। तो योग अक्षेम अपने भक्त का मैं वहन करता हूँ और भगवान इसका पालन भी करते हैं। तो ऐसे ही हमारे भक्तों की कथाएँ चलती रहेंगी। और आप, हम तो यही अनुरोध करते हैं आपसे कि आप यदि अपने हृदय में किसी एक भक्त को भी बैठा लेंगे, वैसे तो भक्तमाल के सारे भक्तों का आश्रय लीजिए, यदि सिर्फ एक भक्त पे भी आप आश्रित रहेंगे, वो कोई भी भक्त हो, सूरदास जी हों, तुलसी जी हों, मीरा जी हों, सुधन्वा जी हों, भीष्म जी, ध्रुव जी, कोई है, किसी एक पे भी अगर आपका चित्त लग गया है, उसको अपना आपने मान लिया है, उसके आचरण से आपने जीना शुरू कर दिया है, आप निश्चित समझिए भगवत प्राप्ति इसी जन्म में हो जाएगी आपको, संभव है इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी। किसी वजह से बहुत ज़्यादा कुकर्म हमसे बने हों और इस जन्म में संभव ना हो तो एक अगला जन्म लेना पड़ सकता है बस। लेकिन अगर हम आश्रित हो गए हैं भगवान के किसी भक्त के तो हमें भगवान मिल जाएंगे। तो भक्तमाल के सभी भक्तों को प्रणाम, सुनने वाले सभी भक्तों को प्रणाम। हरि स्मरण, हरि शरणम, हरि शरणम, राधे राधे, श्री राधे।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।